आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, नीतीश सरकार के फैसले के बाद आज से बिहार में स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर देश में कमजोर पड़ चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 41,506 केस सामने आए हैं। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। रविवार को प्रधानमंत्री के आवास पर राष्ट्रीय सचिवों की बैठक हुई, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई और चुनावी रणनीतियां बनी। इन खबरों के अलावा आज के पॉडकास्ट में यूरो कप के खिताबी मुकाबले की भी खबर होगी। साथ ही आपको बताएंगे कि बारिश ने जहां गर्मी से निजात दिलाई है, वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वज्रपात ने कहर बरपाया है। फिलहाल चलें पहली खबर की ओर। भारतीय दवा नियामक इस हफ्ते एक और कोरोना रोधी वैक्सीन को अनुमति दे सकता है। यह वैक्सीन बच्चों के लिए होगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच इस वैक्सीन की भूमिका बहुत अहम है। बताया गया कि जाइडस कैडिला की 12 साल से अधिक बच्चों के लिए बनाई गई वैक्सीन जाइकाउडी पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी डाटा का विश्लेषण करेगी। अधिकारियों ने कहा कि इस टीके का ट्रायल वयस्कों के साथ साथ 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पर किया गया है। अगर एक्सपर्ट कमेटी पेश किए गए आंकड़ों और दस्तावेज से संतुष्ट है तो वैक्सीन को जल्द ही आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। इस मंजूरी से स्कूलों के खुलने में तेजी आ सकती है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का शुरुआती मूल्यांकन चल रहा है और हमने इसे आगे विचार के लिए एक्सपर्ट कमेटी को भेज दिया है। जल्द ही एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होगी। कंपनी के प्रतिनिधियों को भी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाएगा। अगर कमेटी को कंपनी द्वारा पेश किए गए फेज 3 के आंकड़े संतोषजनक लगते हैं तो इस वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी इसी हफ्ते दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम अपने आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिवों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने की। बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे, उत्तर प्रदेश के सांसद हरीश द्विवेदी और विनोद सोनकर, अनुपम हाजरा और सत्य कुमार मौजूद थे। केंद्रीय कैबिनेट के मेगा रिबूट के बाद यह बैठक एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। भाजपा अगले साल गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए कई बैठकें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी के राष्ट्रीय सचिवों की बैठक करीब एक घंटे तक चली। इस दौरान नड्डा ने संगठन की गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति और बूथ प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ ही कांग्रेस संगठन को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। असम विधानसभा चुनाव में अपनी टीम के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के बूथ प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर पार्टी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा, कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल और राजीव शुक्ला से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को उत्तर प्रदेश भेजने को कहा है और बैठक के दौरान चुनावी राज्य में बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ता सम्मेलन की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन की गतिविधियां तेज करने पर भी चर्चा हुई। बघेल की सिफारिश पर उनके संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उत्तर प्रदेश का प्रभारी सचिव बनाया गया है। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया है। यूरो 2020 के फाइनल में टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। फुल टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबर था। इंग्लैंड ने 55 साल से कोई खिताब नहीं जीता है। इटली ने इससे पहले 1968 में भी यूरो कप का खिताब जीता था। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन शुरुआत की। 1:97 में ही ल्यूक शॉ ने गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। यह यूरो कप के इतिहास में फाइनल का सबसे तेज गोल है। इसके बाद 67वें मिनट में इटली के लियोनार्डो बोनुची ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। फुल टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबर रहा। 30 मिनट के अतिरिक्त समय में भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं। यूरो कप के इतिहास में दूसरी बार टूर्नामेंट का रिजल्ट पेनल्टी शूटआउट से निकला। इससे पहले 1976 में पेनल्टी शूटआउट से रिजल्ट निकला था। इस बार पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड की ओर से हैरी केन और हैरी मैगुअर ने गोल किए, जबकि मार्कस रैशफोर्ड, जेडन सांचो और बुकोया साका गोल नहीं कर सके। वहीं इटली की ओर से डोमनिको बेराडी, लियोनार्डो बोनुची और फेडरिको ने गोल किया, जबकि आंद्रेई बेलोटी और जोर्गिन्हो गोल नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रविवार को मानसूनी बारिश की वजह से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं कई जगह आकाशीय बिजली गिरने से तकरीबन 40 लोगों की मौत हो गई। प्राकृतिक आपदा में दर्जनों लोग घायल हो गए। वज्रपात की वजह से 36 से ज़्यादा मवेशियों की भी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक कानपुर और आसपास के ज़िलों में 18, प्रयागराज में 13, कौशाम्बी में 3, प्रतापगढ़ में 1, आगरा में 3 और वाराणसी व रायबरेली ज़िले में 1-1 व्यक्ति की जान चली गई है। आकाशीय बिजली गिरने से कई लोग घायल भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान कानपुर मंडल में हुआ है। कानपुर देहात में भोगनीपुर तहसील के अलग अलग गाँव में 5, घाटमपुर में 1, फतेहपुर ज़िले में 7 और हमीरपुर के ऊपरी ग्राम में 2 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली की चपेट की वजह से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों को नियमानुसार राहत राशि तत्काल देने का निर्देश दिया और घायल हुए लोगों का समुचित उपचार करने को कहा है। राजस्थान में भी रविवार को प्रकृति का कहर टूटा है। अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 9 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई है। इनमें सबसे ज़्यादा मौतें जयपुर में हुई। यहां आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की जान चली गई। कोटा में 4 और धौलपुर में 3 बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा अलग अलग ज़िलों में भी 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठे। बताया जाता है कि जयपुर में शाम करीब 6:15 पर बारिश शुरू हो गई। इसके बाद इसकी गति तूफानी हो गई। बारिश के दौरान आमेर महल के सामने वॉच टावर पर 2 बिजली गिरी। इससे वहां घूमने गए लोगों में करीब 18 लोग इसकी चपेट में आ गए। उनमें से 11 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। मौके पर पहुंची आपदा राहत की टीमों और पुलिस ने घायलों को तत्काल सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति काबू होते ही नीतीश सरकार ने आज यानी सोमवार से सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के मुताबिक 11वीं 12वीं के सभी स्कूल, सभी डिग्री कॉलेज, सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान कुल छात्रों की संख्या की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। हालांकि सरकार ने स्कूल कॉलेज को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। यही नहीं, संस्थान के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी और वैक्सीनेशन करा चुके शिक्षकों और कर्मचारियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की 3 अप्रैल को हुई बैठक में राज्य सरकार ने 5 अप्रैल से सभी शिक्षण संस्थान को बंद रखने का निर्णय किया था। अब नीतीश सरकार ने करीब 98 दिन बाद इन्हें खोलने का फैसला किया है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।